जय नित्र स्वरम से प्रभ्रष्टोत्तर सदाश्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर से प्रभुपाद की जय। जन्माचार्य हरिदास ठाकुर की जय। समस्त भक्तवृंद की जय। श्रीमद् भागवत ग्रंथराज की जय। नित्य गौर आनंदे। नाम श्रेष्ठ मनमपि सचिपुत्र मत्र स्वरूपं रूपं तैश्चक्रज मरुपरिं माथुरिंगोष्ठवादिं राधाकुंड गिरिवरमोह राधिका माधवासं प्राप्त जैश्य पशित कृपयां श्रीगुरुं तं नत यस्मे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पैतानं पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त्या विहीना अपराधलक्षे क्षिप्रादिकमादितरङ्ग मध्ये कृपामहीतं शरणं प्रपन्ने वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दां वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दां आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावतिब्ब छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। सा सुख निवतचेतास्तद्बुद्धस्तन भागवेपजीतुरुचिलीलाकृष्ट सारस्तदियं वैतनत कृपादस्तत्तदीपं पुराणं तमखलब्रजिघ्नाङ्गशसोनुनतो यस्मिन् भवे भवे यथा भक्तिपादस्तव जायते तथा कुरुषदेवशनाथस्तमजत प्रभो नाम संकीर्तनं जस्य सर्वपाप प्रणाशनां प्रणामं दुःखशमनस्तु तं नमामि हरि परां। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जय मुदीरयेत्। नाष्ट प्रयेश भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयाम् भागवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टके। श्रीमद्भागवतम् नवम स्कंद नवम अध्याय श्लोक नंबर 28। देह अयं मानुष राजा पुरुषस्य अखिल अर्थद तस्मात् अस्य बाधः वीर सर्व अर्थबाधः उच्यते। देहोऽयं मानुषो राजन् पुरुषस्याखिलार्थदम् तस्मादस्य वधो वीरान् सर्वार्थवद उच्यते। देहोऽयं मानुषो राजन् पुरुषस्याखिलार्थदम् तस्मादस्य वधो वीरान् सर्वार्थवद उच्यते। देहं मानुषे राजन् पुरुषस्याखिलार्थदम् तस्मादस्य वधो वीरान् सर्वार्थवद उच्यते। बोलिए आप लोग।
Yeah.
देह शरीर अयम उहा मानुष मनुष्य का राजन हे राजा पुरुषस्य जीवो का अखिल समष्टि अर्थद लाभकारी तस्मात् इसलिए अस्य मेरे पोती के शरीर की बाधा हत्या वीरा हे वीर सर्व अर्थवद सारे लाभप्रद अवसर की हत्या उच्चते कहा जाता है। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, हे राजा हे वीर, वह मानव शरीर सबके लाभ के लिए निमित्त है। यदि तुम इस शरीर का असमय बध कर दोगे तो तुम मानव जीवन का सारे लाभों को हत्या कर डालोगे। श्री नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, हरि हरि विफले जन्म गवाइनु, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विष खाइनु, गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन। ऐसा है वो मनुष्य का शरीर अत्यंत मूल्यवान है, क्योंकि इसी शरीर से कृष्ण के उपदेश को समझा जा सकता है और चरम गति प्राप्त की जा सकती है। जीव इस संसार में भगवत धाम वापस जाने के उद्देश्य पूरा करने के लिए आया है। भौतिक जगत में सुख की लालसा की जाती है, लेकिन चरम लोक को न जानने के कारण मनुष्य को एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। यदि किसी को मनुष्य का शरीर धारण करने का अवसर मिले तो वह इसी शरीर में धर्म अर्थ काम तथा लोभ इन चारों सिद्धांतों का पूर्ति कर सकता है, और यदि वह नियमित रह आए तो मोक्ष भी से भी आगे बढ़कर राधा कृष्ण की सेवा में लग सकता है। यही जीवन की सफलता है कि जन्म मरण के चक्र को रोककर भगवत धाम जाया जा सकता है और राधा कृष्ण की सेवा की जाए। अतएव वह मनुष्य शरीर जीवन की उन्नति को पूरा करने के लिए मिला है। पूरे मानव समाज में मनुष्य बोध को शोचनीय माना जाता है। यद्यपि कसाई घरों में हजारों लाखों पशुओं का बध किया जाता है और कोई तनिक भी परवाह नहीं करता, किंतु एक भी मनुष्य का बध गंभीरता से लिया जाता है। क्योंकि मानव जीवन उद्देश्य पूर्ति के लिए मनुष्य जीवन ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मनुष्य शरीर कितना लाभप्रद है। महाप्रभु क्या कहते हैं, जीवेर कृपाय कहिल कृष्ण वेद पुराण, मायामुग्ध जीवेर सत नाही कृष्ण ज्ञान। कौन जानता था, कोई नहीं। ये भागवत में श्लोक देकर समझा रहा है, तो जब भागवत पढ़ेंगे तो हमारा ये ज्ञान होगा ये मनुष्य शरीर कितना लाभप्रद है। इस शरीर में काम क्रोध लोभ मोह मद माधुर्य ये षड़ रिपु है, इससे हम लोग वशीभूत हो जाते हैं और समय समय पर ऐसा कर्म करते हैं जो लोक निंदाकारी भी हो जाता है। उस समय हमारा वस्त्रों का भी ज्ञान नहीं रहता है। हमारा वस्त्र मतलब क्या है, ये कपड़ा नहीं है, हमारा वेश वैष्णव वेश, इसको वस्त्र कहते हैं। हम जो वैष्णव वेश लिया है इसका भी हमें ज्ञान नहीं रहता है। शुक्ल वस्त्रे मोची बिंदु जैसे ने लुकाए सन्यासीर अल्पदोष सर्वलोके गाय। हम लोग डिवोटी है, नाम दिया गया है भक्त बोल के, तो हमें इस प्रकार कर्म नहीं करना चाहिए जो लोक जगत में निंदनीय हो। दूसरा, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, भगवत धाम जाने का तैयारी करेगा, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ेगा, कौन खाया, कौन लिया, कौन पिन्हा, कौन गाली दिया, इस चक्कर में अगर पड़ गया ना तो बाहर का कर्मी बनना बहुत अच्छा है। उसमें भी लोग तो इसी में पड़ा हुआ है, दारू पीने वाला व्यक्ति अगर दारू पी के सुहा हुआ रहे, क्या बोला, वो दारू पीने वाला व्यक्ति है। और एक अगर वैष्णव भक्त इस प्रकार अगर बाहर सुहा रहे, अरे कुछ हो गया क्या इसका, यही पूछेगा। इसलिए हमें जो शरीर मिला है, अगर बुद्धिमान बनना चाहते हैं हम, तो क्या करना पड़ेगा, जिसको जो करना है करो भाई। आपसे हमारा इतना ही संपर्क है, हरे कृष्ण, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा अगर हम आपसे संपर्क करेंगे ना, क्या होगा, बंधन में पड़ जाएंगे। और बंधन क्या होगा, हमको नरक में ले जाएगा। जो हरे कृष्ण करने में जितना टाइम लगता है, उतना ही सबसे प्रीति रखना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि कोई इस जगत में कोई किसी का बंधु नहीं है, सब अपना स्वार्थ लेके पड़ा हुआ है, सब सोचता है इससे हमारा कुछ स्वार्थ मिलेगा, इससे हमारा कुछ मिलेगा, इससे हमारा कुछ मिलेगा, यही प्रीति का बंधन है हमारा, दूसरा कुछ नहीं है। भक्ति दृष्टि से प्रीति हमारे पास है नहीं है, कि भी एक डिवोटी है, हम भी डिवोटी, इनका साथ प्रीति करना चाहिए। ददाति पति गिज्ञाति भुज मक्खति पिंचती भूंगते भोजित चाहिए सड़विद प्रीति लक्षणम। ये जो प्रीति है, इस प्रीति का व्यवहार हम लोग कोई नहीं करते हैं, हम लोग सब स्वार्थवश प्रीति करते हैं। इससे हम कुछ मिलेगा क्या, ये कुछ करेगा क्या, अरे इसको आज कुछ हम बोल देंगे तो हमारे पीछे पड़ जाएगा। निरपेक्ष नहीं ले धर्म रक्षण ना जाए, कौन बोला, महाप्रभु। महाप्रभु क्यों बोला ये बात, दामोदर पंडित महाप्रभु को डांट दिया, स्वयं भगवान, देखिबो देखिबो गोसाई तुम्हारा गोसाई या गोसाई, मैं अभी तुम्हारा गोसाई गिरी देखूंगा। लोग को उपदेश करके महान हो और खुद अपना आचरण नहीं करते हो, अंतरे संतोष प्रभु। महाप्रभु खुशी हो गया, अरे दामोदर, दामोदर समर नहीं अंतरंग, ये दामोदर जैसे अंतरंग मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे भी डांट सकता है। ये अंतरंग इस प्रकार जो व्यक्ति विशेष को ना देख करके, हरिभजन का दृष्टि को देख करके अगर शोक का साथ संबंध प्रीति किया जाए, तो भी वो प्रीति भक्ति कहलाएगा। जब तक प्रीति नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं कहलाएगा। हम जितना साधन कर रहे हैं, ये साधन जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधार की जय, अगर प्रीति का साथ हम नहीं करते हैं तो क्या होगा, ये सुकर्म हो जाएगा, अच्छा कर्म हो जाएगा, भक्ति नहीं कहलाएगा। भक्ति तभी कहलाएगा जब कृष्ण प्रीति का सामने रख के कोई भी कर्म किया जाए। अगर आप कुछ भी करे, चाहे कुकिंग करे, चाहे अर्चन करे, चाहे झाड़ू मारे, चाहे हरिनाम ले, चाहे मैनेजमेंट करे, सब कर्म अगर प्रीति विषयक ना होता है तो क्या होगा, इस कर्मों का फल हमें भोगना पड़ेगा। ये कर्म अच्छा और बुरा दोनों होगा, अच्छा कर्म होगा तो पुण्य होगा स्वर्ग जाएंगे, खराब कर्म होगा तो नरक जाएंगे, इससे भी खराब होगा तो नरक भी नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, हिरण्य और हिरण्य कशु मिला था, नरक मिला था, स्वर्ग भी नहीं मिला, किधर भी नहीं मिला, आसमान में चिपक कर रह गया। बोल सकते वो लोग स्वर्ग गया था, नहीं बोल सकते नरक गया था, किधर भी नहीं गया, आसमान में कोई कल्प तक रह गया, उसके बाद हमें आसमान में चिपकना पड़ेगा। फिर भगवान का मर्जी होगा तो बुलाएगा तो नहीं बुलाएगा, रह जा चिपक के, ये कर्म का फल है। इसलिए जब हम तिलक धारण किया है तो हमारा सबसे पहला अच्छा कार्य क्या है, हमें अपने आप को उद्धार करना, हम आपको मदद नहीं कर सकते हैं, भाई भी हो सकता है हम हमारा मदद नहीं भी ले सकते हो। बोलेगा छोटा होकर हमको सिखा रहा है, नहीं तो बोलेगा बड़ा होकर हमको बता रहा है। दोनों में से कुछ ना कुछ दोष हम देखते रहेंगे, आप हमारा दोष देखेंगे, आप मेरा दोष देखेंगे, और मैं आपका दोष देखूंगा। ये युग का धर्म है दोष दृष्टि करना, कभी भी हम उसका गुण का शिकार करने का तैयार ही नहीं रहते हैं। इस प्रकार मनोभावापन्न होने के नाते शास्त्र क्या बोलता है, माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वत कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कृष्ण कहिलो वेद पुराण। सबसे पहले मनुष्य का गुरु कौन होता है, शास्त्र, शास्त्र गुरु फर्स्ट, प्रथम गुरु, और अंतिम गुरु भी शास्त्र ही होता है, क्योंकि शास्त्र का आधार पर हमें अपना जीवन धारण करना पड़ता है। अगर शास्त्र को तो जीवन यापन करे तो भारत भूमि में जिसका मनुष्य शरीर मिला है वो भगवत धाम जाएगा, और अशास्त्रीय आचरण अगर करे तो नहीं जा सकते हैं। इसलिए यहां पर कहते हैं कौन, सौदास का पत्नी दमयंती, यहां मदयंती नाम दिया, अलग नल दमयंती अलग है, महाभारत में अलग है नल दमयंती कथा वो अलग है, और यहां जो मदयंती व दमयंती जो भी है, बोले राजन आप राजा हो, आप साधारण व्यक्ति नहीं है, नहीं ये नहीं कह रहे, ये अपना ब्राह्मण का पत्नी कह रहे हैं, मदयंती नहीं कह रहे हैं, ब्राह्मण का पत्नी कह रहे हैं, उल्टा हो गया हमारा, बोलता आप राजा हो, आप इक्ष्वाकु का वंशधर हो, आप सामान्य व्यक्ति नहीं है। कोई व्यक्ति अगर खराब कर्म कर, तेरा बाप ऐसा है, तुम ऐसा काम कैसे करते हो, कम से कम अपना वंश का तो गौरव रखो। यहां पर ब्राह्मण यही कह रहे हैं, जब राजा हो आप तो कम से कम सोचो आपको इस प्रकार कर्म नहीं करना चाहिए। अरे ब्राह्मण है, सब कुछ जानता है, वेद वेदांत सब जानता है, इसको आप बद मत क्या करो, अनुरोध कर रहे हैं। लेकिन स्वभाव कहां जगह, राक्षस का स्वभाव प्राप्त तो हो गया, कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहां पर प्रभुपाद जी कहा है कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, निर्जह माद्य सुलभं सुदुर्लभं, निर्जह माद्यम सुलभं सुदुर्लभं, दुर्लभ है, दुर्लभ में सुदुर्लभ है। ये आसानी से प्राप्त तो नहीं होता है, चौरासी लाख 84 इसमें मनुष्य शरीर आता है, इसमें 80 लाख चक्कर मारना पड़ता है, 80 लाख चक्कर मारने के बाद अगर पेड़ बन गया तो कितना करोड़ साल रहना पड़ेगा, कोई ठिकाना नहीं है, है ना। कलकत्ता में एक बड़गाछ है ना, बरगद का पेड़ है, के बूटा ने क्या नाम है उसका भूल गया, बरगद का पेड़ है कलकत्ता में, कोई सालों से है पड़ा हुआ, इसे हजारों साल हो गया, और इसे अगर पेड़ का जन्म मिल गया तो हम प्रलय रुक जाएगा, वहीं रुक जाएंगे। इसलिए कहते हैं जो मनुष्य शरीर दुर्लभ है, अगर उसको किसी को मिल गया तो सुलभ हो गया। प्लवं सुकल्पं गुरुकर्ण धारम मया अनुकूलेन नवेश सतिरितं पुमान भवाब्दी न तरेत स आत्महा। सुसाइड करना, जैसे किसी भिखारी को अगर पारस मनी मिल जाए और जैसे मिला वैसे किच्चो में छूक फेंक दिया तो क्या होगा, वो हाल है हमारा सबका, हमको पारस मनी मिल चुका है लेकिन हम इसको किच्चड़ में फेंक रहे हैं, विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर इसका टीका करते हैं, ये भिखारी को पारसमणि मिला और कीचड़ में फेंक दिया, वही हाल है। हमें मनुष्य शरीर मिला, अगर किसी को समुद्र में तैरना तो जहाज जाइए, तो जहाज हमको मिल चुका है। अभी जहाज का नाविक की जो नहाज आपको जहाज रहेगा उसमें जा सकते हो क्या? नौका है आपका पास, आप बोलोगे हम बोट की चला जाएंगे, जा पाओगे? कि हमको चलाना तो नहीं आता है। प्रवंग सुकल्पंग गुरुकर्ण धारम वो भी मिल जाओ हमको, क्या बोलते उसको, कैप्टन, हमें कैप्टन भी मिल गया। नौका मिला, कैप्टन मिला, नाविक मिल गया, मतलब जो कांडारी जो होता ना वो भी मिल गया। कौन है? गुरुकर्ण धारम। तो दो सुविधा हमें मिल गया, अभी तीसरा सुविधा क्या है? माया अनुकूलेनो नभे सतिर, नभ शब्द क्या है? आकाश। आकाश में क्या चलता है? हवा। नभस्व आकाश में हवा चलता है। अगर समझ लो नाव भी मिला, नाविक भी, साइक्लोन आ गया तो, टॉर्नेडो आ गया तो क्या होगा? कहां जाएगा को ठिकाना नहीं है। इसलिए कहते माया अनुकूल नवेश अनुकूल, अगर हवा हो, अनुकूल हवा क्या है? गुरु सेवा। अगर आप मनुष्य शरीर मिलने के बाद अगर गुरुकरण किया, अगर गुरु का सेवा करते हो तो माया अनुकूल, भगवान क्या कहते हैं? मैं उसको अनुकूल हवा प्रदान करूंगा जैसे वो नाव बराबर जा सके। जो भी हम गुरु का शरण करेंगे तो भगवान वो गुरु शरण का कृपा के द्वारा, ये व्यक्ति सदा सर्वदा गुरुदेव का शरण करते हैं इसलिए इनको सहायता करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि भगवान का भक्त वात्सल्य गुण है। भगवान कहते हैं आचार्य जवांग बिजानियात नाव बने कहचित, मैं आचार्य जो हूं दूसरा नहीं समझना चाहिए, और जो व्यक्ति गुरु पूजा नहीं करता है उसको समस्त पूजा निष्फल है, कोई काम का नहीं है। जो भी लोग गुरु का शरण करते हैं, मेरा भक्त के शरण कर रहे हैं, तो भगवान ने अनुकूल माया अनुकूले नभेश सतरितांग पुमान भवावधि, मनुष्य शरीर में अगर ये संसार भव समुद्र अगर तरता नहीं है, इतना सुविधा मिलने के बाद वो क्या है? स्व आत्महा, मतलब 14 माला से 15 माला जो भी है ऊपर से कूदी मार देना, स्वाहा हो गया। और क्या देगा भगवान? भगवान ने गुरु दिया, भगवान ने खाने का बंदोबस्त कर दिया, भगवान ने पीने का कपड़ा दिया, भगवान ने मंदिर दिया, दिया ना, भगवान ने भगवान को भी खड़ा कर दिया, जप माला दिया, बुक दिया, और क्या हमको करोड़पति बना के छोड़ देगा? फिर करोड़पति बन जाए क्या करेगा? इसका पीछे भागेंगे, उसका पीछे भागेंगे, उसका पीछे भागेंगे, वे भागते रहेंगे। हमारा जो शरीर का लक्ष्य उसको हम भूल जाएंगे। इतना सारे सुविधा दिया, कोई क्या कहेगा आप सब तो मंदिर में, हम लोग तो गृहस्थ है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो आप लोग तो खाना पीना मिल जाता, हमको तो सुबह जाना पड़ता है, फिर मार्केट में जाकर के रात को 8-9 बजे आते हैं, सुबह हमारे लिए क्या बंदोबस्त है? भगवान उनको भी बंदोबस्त करके दिया, क्या दिया? हरिनाम गाने प्रयासे मधुपाष्य नवंते एव जीवंते सन्मुखरितांग भवदिया वार्ताम स्थाने स्थितांग, स्थाने स्थितांग, जिस जायगा में हो ऐसा ही रहो। ब्रह्मचर्य तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तो गृहस्थ, वानप्रस्थ वानप्रस्थ, सन्यास सन्यास, ब्राह्मण तो ब्राह्मण, क्षत्रिय तो क्षत्रिय, वैश्य तो वैश्य, शूद्र तो शूद्र, जैसा रहो ऐसा ही रहो। स्थाने स्थितांग मतलब यही है, यही आपको स्थान तक करना पड़ेगा, नहीं आप जिस स्थान में रहो उसी स्थान में रह करके शुद्धिगतांग, जो साधु लोग जो हरिकथा कीर्तन करते हैं अगर समय मिलता है तो उसको सुनो, अगर समय नहीं मिलता तो क्या है? भूख पढ़ो। कि महीने में अगर 10,000 रुपया कमाते हो तो 100 रुपया भगवद गीता मिलता है, 25 रुपया माला मिलता है और 25 रुपया बीड बैग मिलता है, हो गया ना आपका उद्धार है 150 रुपया में। और क्या चाहिए, 150 रुपया में उद्धार हो गया। गृहस्थी लोग प्रॉब्लम है क्या, हरि भजन का अगर कोई करे तो ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ हो चाहे संन्यास वानप्रस्थ, किसी के लिए कोई आश्रम का कोई भेद नहीं है, नहीं तो आश्रम कोई काम का नहीं है। हरि भजन करने के लिए सब जगह समान है, सर्वत्र सर्वदा हरि भजन सब जगह में हो सकता है, सर्वत्र हो सकता है, सब समय में हो सकता है, ऐसा नहीं जी किसी समय नहीं हो सकता है। ये चौथे श्लोक अंतिम श्लोक क्या लिखा, सर्वत्र सर्वदा करके अंतिम समाचार दिया। गर्भावस्था में हरि भजन किया प्रह्लाद महाराज, हाँ बाल्यकाल में ध्रुव महाराज, यौवन में अम्बरीश, वार्धक्य में धृतराष्ट्र, ऐसा कौन समय है, और मृत्यु समय में कौन किया, अजामिल। अभी बोलो कौन समय हरि भजन नहीं हुआ, सब समय हरि भजन हुआ। हम सब जानते हैं, ऐसे नहीं हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग सब इसको जानते हैं, लेकिन जानने के बाद कार्यों में इनको लाना पड़ेगा। कोई लाए चाहे ना ले वो अलग बात है, खुद को तो लाना चाहिए, जिसको उद्धार होना है वो बुद्धिमान व्यक्ति इसको पढ़ेगा और क्या करेगा, सबको दंडवत करेगा, है ना। संध्या वंदन भो नमस्ते भगवद गीता में है ना, रामानुचार्य की इसका श्लोक जमुनाचार्य का, सबको प्रणाम करना पड़ेगा, ये सबको दंडवत कर रहा हूं, तो हमारा और कोई कृत्य नहीं है, एक ही कृत्य है। क्या कृत्य है, कृष्ण नाम का शरण और क्रंदन, यही एक ही कृत्य है, दूसरा कोई कृत्य नहीं है। बाकी कृत्य जितना ना अपना होते रहेगा, अपना होते रहेगा, तो यही कृत्य को हमें ध्यान देना चाहिए। दुनियादारी हमारा वजह से रुकने वाला नहीं है, जब हमारा वजह से दुनियादारी रुक जाएगा नहीं, वो तो चलते रहेगा, लेकिन हम रुक जाएंगे, हमें चालू रखने के लिए हमारे लिए कर्तव्य यही एक ही है। ये मनुष्य शरीर मिला है, इसका सदुपयोग राधा कृष्ण का प्रेम सेवा, दूसरा कोई उपयोग में नहीं है, उसी हमारा निष्ठा होकर के सब कुछ करना चाहिए। समय समय पर जितना सारे कर्तव्य कर्म हमारे सामने आते हैं, वो कर्तव्य समझ कर उसका निष्ठा का सब पालन करने का, और बाकी अपना ध्यान हरि नाम में लगाने का, तभी मनुष्य शरीर का सार्थकता है। दुर्लभं मनुष्य जन्मं देहिनां खनवरुंगुर तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठे प्रिय दर्शनम्। दुर्लभं मनुष्य जन्मं देहिनां खनवंगुर, देहिनां देही जीवात्मा के लिए, देह नहीं देही कहा गया है, जीवात्मा के लिए मनुष्य शरीर दुर्लभ है। और क्या है दुर्लभ, जो छात्र में खनभंगुर है, अभी मर सकता है, 10 साल बाद भी मर सकता है, ये मृत्यु ध्रुव सत्य जाते से ही ध्रुव और मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है इसका मृत्यु सुनिश्चित है, कभी भी हो सकता है, ये सत्य को कोई टाल नहीं सकता है, ये ध्रुव सत्य है। इसलिए कहते हैं देहिनां खनभंगुर, आत्मा के लिए जो खनभंगुर मनुष्य शरीर मिला है इसको उपयोग करो। तत्रापि दुर्लभं मन्ये, इससे भी दुर्लभ क्या है, वैकुंठ प्रिय दर्शनम्। वैकुंठ प्रिय कौन है, वैष्णव, इस वैष्णव का दर्शन इससे भी दुर्लभ है। तो मनुष्य जो है थोड़ा मार्केट जाओगे ना, डायमंड मार्केट जाओ चाहे चौरके दिमाग सीएसटी में उतरो, तो बहुत सारे दर्शन मिल जाएगा मनुष्य, कोई कमी नहीं होगा, थक जाओगे, लेकिन वैष्णव नहीं मिलेगा। इसलिए वैष्णव का दर्शन सबसे दुर्लभ है। लवमात्र साधुसंग सर्वसिद्धि है, सुआ गार लव में 1 सेकेंड होता है, तो अगर एक सेकंड को 111 भाग करोगे उतना समय भी अगर साधु का संग हो जाए तो सर्वसिद्धि है। वेद ने कितना टाइम संग किया था? दो चार वार्तालाप हो गया था नारद का साथ। हाँ, चिंतामणि वेश्या को उद्धार करने के 3 दिन रहना पड़ा था हरिदास ठाकुर को, अलग बात। प्रभुपाद जी पाश्चात्य जगत में किया, क्या हाल हुआ? हरि बोल, ये साधु संग डिंग 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 करते रहा, और डिंग डिंग में पूरा पाश्चात्य जगत खींच के आ गया। अरे क्या डिंग डिंग मारा है, वो सांप का बीन बजा रहे हैं ना, तो सांप खींचा हुआ था, वो प्रभुपाद का डिंग डिंग है, वो सांप खींचा हुआ है, पूरा पाश्चात्य वही खींच के आ गया, ये साधु। इसलिए कहते हैं तत्रापि दुर्लभ मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनाम, ये वैकुंठ का प्रिय व्यक्ति है, वैकुंठ भगवान, भगवान का एक नाम है वैकुंठपति, उनका अगर दर्शन हो जाता है, कोई साधु लोग स्वेच्छा से दर्शन देता है और कभी दर्शन करना पड़ता है। प्रभुपाद स्वेच्छा से दर्शन दिया, प्रभु दर्शन के लिए इंडिया नहीं आया था, वो स्वेच्छा से जाके दर्शन दिया, देखो मैं साधु हूं, देखो आप लोग मेरा पावर देखो, अपना ऐश्वर्य प्रकाश किया प्रभुपाद जी वहां जाकर के। लाके क्या दिया? बुक पढ़ो। अरे पढ़ के अपना आपको समझो तुम कौन हो, किसी का पति हो, किसी का बेटा हो, किसी का बाप हो, किसी का भाई हो, किसी का भांजा हो, बा किसी का प्रतिवेशी हो, तुम कौन हो समझो इसको, कौन हो तुम? मैं आत्मा हूं। आत्मा का काम परमात्मा का सेवा करना प्रभुपाद ने सिखा दिया। इसलिए कह जाए तत्रापि दुर्लभ मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम, ये मनुष्य इसलिए ब्राह्मण ही कह रहे हैं, हे राजन आप तो राजा हो, इक्ष्वाकु का वंशधर हो, आपके ब्राह्मण को बाद मत क्या करो कि ब्राह्मण वेदांती है, ये सब कुछ जानता है, भगवान ने असत्तमा का बोध करने का आदेश नहीं दिया, ये बोला असत्तमा ब्राह्मण है इसको बोध नहीं हो सकता है, तो ब्राह्मण का बोध करने का आदेश किधर भी नहीं दिया जाता है, फिर भी जो ब्राह्मण को मारता है उसको क्या हो जाता है? सत्यानाश हो जाता है। इसलिए वैष्णव शास्त्र क्या कहते हैं, जीवे सम्मान करो जाने कृष्ण अधिष्ठान, जीव को सम्मान करो, सब जीव के हृदय में कृष्ण परमात्मा विराजित है, इस हिसाब से जीव का सम्मान करो। ये सब जान करके हमारा कोई क्या कहते हैं, ये क्योंकि इसी शरीर में कृष्ण का उपदेश समझा जा सकता है, यहाँ पर दो चार कुत्ता, दो चार भेड़, दो चार गधा, दो चार बैल को बांध दिया जाए, वो लोग सुनेगा शास्त्र, बोलो सब बांध के रख दो इधर, और एक व्यक्ति भागवत कथा कहते रहे, कुछ फर्क पड़ने वाला है? इसलिए मनुष्य क्योंकि ये समझ सकता है, ये जान सकता है, ये समझा सकता है, इसलिए मनुष्य शरीर को इतना अर्थदक आ गया है, और यही मनुष्य शरीर में हमें क्या मिल सकता है, सर्वोच्च पदवी, गोलोकेर नित्य धन हरिनाम संकीर्तन, नित्य संपत्ति हमें मिल सकता है, ये हमारा सौभाग्य है, जहां हमें मनुष्य शरीर मिला, इस्कॉन जैसे संस्था मिला, और इन संस्था में रह करके कर्णधार गुरु मिला, अभी अनुकूल हवा भी दे रहे हैं, सुबह शाम भागवत और भागवत गीता क्लास भी हो रहा है, और कीर्तन भी हो रहा है, तो अनुकूल हवा भी दे रहा है, फिर भी अगर हम आश्रम में रह गए तो हमारे लिए छुट्टी है। आश्रम में रहने का मतलब गया आश्रम में नहीं है, मैं आश्रम नहीं कह रहा हूं, ये मत सोचना, वर्ण आश्रम कहते हैं, फिर हमारी वर्ण आश्रम का चक्कर हमें बांधा रह गया तो हमारा आत्मा सुसाइड हो रहा है। बुद्धिमान व्यक्ति कर्तव्य अपने आप को निकाल जाना। चलो टाइम तो हो गया, ये बुक तो हम खुला ही नहीं। हरे कृष्णा। हमारा जय दे क्या घर पर समाधान आज किचू जाए क्या समाधान है बाबा आपका? समस्या का समाधान है, प्रश्न कुछ नहीं है, समाधान करना पड़ेगा। प्रश्न कुछ नहीं है, समाधान करना पड़ेगा। जिज्ञासा यही है जे कहा ना जी, आपने कहा माला झोला लेना जरूरी है, ऐसा भी देखा जाता है बहुत लोग नहीं लेके भी चला गया भगवत धाम। तो हमें सदा सर्वदा शास्त्र पर दृष्टि रखना पड़ेगा। कौन गया कौन नहीं गया वहां तो हम पहुंच के देख के तो नहीं आया, हम अंदाज लगा लेते भाई वो चला गया। अब वहां जाकर उनसे मिल के आएंगे तभी तो बोल सकते हो गया है, हम तो मिला नहीं, हम अंदाज लगा रहे। शास्त्र क्या कहते हैं? नारद आदि ऋषिविंद भक्ति विनोद ठाकुर का, चलो भक्ति विनोद ठाकुर कल्याण कल्पतरु बोल के ग्रंथ लिखे हैं। नाली रे तिलक माला लोईले, नाली रे तिलक माला तेजी रे दिखर जला, निजे कोइले आपनो मत। हम लोग इस ग्रंथ पढ़ते नहीं, हम लोग का दुर्भाग्य है। नाली ले तिलक माला, तिलक भी नहीं लिया, माला भी नहीं लिया, तेजी ले दिखर जाला, दीक्षा भी नहीं लिया, मतलब दीक्षा का जाला कौन सहन करेगा भाई? ये चार नियम फॉलो करना पड़ेगा, मगजमारी कौन करेगा? निजे कोइले नवीन मत, खुद एक नया पंथा निकाल लिया। ये पंथा क्या होगा? हमारा आचार्यों का विरोधी है कि वैष्णव संप्रदाय में संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कलावसान कृतो निद्राहार विहार आदि बीज चत्यंत दिनों चुज गोपी भावे, ये वैष्णव सिद्धांत है। क्योंकि हम अगर बोलेंगे माला भी नहीं लेंगे जो हम हरे कृष्ण निर्मल करते रहेंगे, लेकिन महाप्रभु क्या बोला? निर्बंध निर्बंध क्रिया लो, निर्बंध हमारा जरूरी है। निर्बंध शब्द का अर्थ है संख्या पूर्वक। असंख्य तो हरिनाम कीर्तन करने का अधिकार है, असंख्य तो जप करने का अधिकार नहीं है। संख्या पूर्व का नाम क्यों कहा गया है? जहां में संख्या पूर्व के नामगान नति सब कुछ करना चाहिए तो भी हमारा भजन में साधन में सिद्धि होगा। हाँ कोई कोई गया वो अलग, को किसी किसी का अगर अपराध ना हो अलग बात है। वो शास्त्र कहते हैं ये चोरी करते वक्त भी भगवान का संपत्ति चोरी किया फिर भी भगवत धाम गया। क्यों गया? कि उसको बोध नहीं था चूरी है कि डकैती है, इसलिए हो गया। इसलिए अगर कोई अगर ये सोचे ये जी को भाई हरिनाम हम करते रहेंगे, माला नहीं लेंगे, तिलक नहीं करेंगे, दीक्षा नहीं लेंगे, तो क्या होगा? गुरु अवज्ञा रूप अपराध होगा, जिस अपराध का कारण वो भगवत धाम नहीं जा सकता है। भक्ति सौंदर्य इसमें पड़ जाएगा, ये इसका समाधान है। कोई गया तो गया, अच्छा है चलो जाने दो, उसको हम खींच को तो नहीं लाएंगे। लेकिन इस प्रकार मनोभाव अपन अगर कोई व्यक्ति है तो ये मनोभाव अपन उसको गुरु अवज्ञा रूप अपराध में डाल देगा, क्योंकि वैष्णव का अपराध करेगा। वैष्णव यही विद्या जीता है, चार नियम पढ़ो करो, सोलोमाला जप करो, भगवत गीता पढ़ो, मंगल आरती आओ, क्लास करो, नहीं रह पाते जो घर में रहते तो भगवत गीता इत्यादि कम से कम पढ़ा करो। भाई दूर है कोई बात नहीं, कम से कम शास्त्र पढ़ो। अगर समय मिलता है कभी भी साल में एक आध बार तो जो फेस्टिवल होता है वो फेस्टिवल में आकर मंदिर का भक्तों का साथ रह करके फेस्टिवल का उद्यापन करो, हो गया आपके लिए भक्ति। ये कहते हैं इसका समाधान है, दूसरा समाधान नहीं कर सकते हैं। चलो हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत ग्रंथराज की जय।